इस्लाम में बालाधिकार।
प्रिय श्रोतागण, साप्ताहिक कार्यक्रम इस्लाम में बालाधिकार की अंतिम कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
आपको अवश्य याद होगा कि इस कड़ी के आरंभ में हमने बच्चे के महत्व तथा विश्व में उसके अधिकारों के इतिहास के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों, कन्वेंशनों और इस्लाम में बच्चों को दिए गए अधिकारों की भी चर्चा की थी। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है कि बच्चों से ही इंसानों की नस्लें चलती हैं। हर समाज के विकास के लिए बच्चे इंसान की सबसे मूल्यवान पूंजी होते हैं। दुनिया में पति पत्नी को संतान बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया जाता है, परंतु जनसंख्या के अधिक होने के साथ ये बात स्पष्ट है कि संतान के अच्छा और सही होने के लिए उसका सही प्रशिक्षण ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
इंसानों की तरह ही बच्चों के भी अधिकार हैं। उम्र कम होने जैसी चीज़ के कारण बच्चों को अपनी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए माता पिता और अभिभावकों की ज़रूरत होती है, और अगर उनका कानूनी व प्रभावी समर्थन न किया जाए तो बच्चे समाज के वे वर्ग हैं जिन्हें सबसे अधिक आघात पहुंचता है। इस आधार पर बच्चों के सही प्रशिक्षण के लिए उनका हर प्रकार से समर्थन हर समाज का महत्वपूर्ण व परम दायित्व है, चाहे वह समर्थन नैतिक हो, आध्यात्मिक हो या शारीरिक। ईश्वरीय धर्म इस्लाम बच्चों को बहुत महत्व देता है। इस्लाम धर्म के उदय से पहले अरबों के मध्य एक गलत व बुरी परंपरा यह थी कि वे लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे, परंतु इस्लाम के उदय के आरंभ से ही पैगंबर इस्लाम ने अज्ञानता के काल की इस गलत व बुरी परंपरा से संघर्ष किया।
इस्लाम से पहले अज्ञानता के काल में अरब समाज में व्याप्त कुरीतियों के अनुसार परिवार में बच्चों का कोई सम्मान नहीं था। इस गलत परंपरा के अनुसार इस्लाम ने बच्चों के अधिकारों के लिए कार्यक्रम बनाए और इसके साथ कुछ बातों की सिफारिश भी की जो बच्चों के मूल महत्व और स्थान को दर्शाती हैं। धर्म की दृष्टि में उसे सुन्नत कहते हैं। सुन्नत उस कार्य को कहा जाता है जिसका करना अनिवार्य तो नहीं है, परंतु अगर उसे अंजाम दिया जाए तो इसके बदले में पुण्य मिलेगा, परंतु अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इंसान प्रकोप का पात्र नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, जब संतान पैदा होती है तो उसके जन्म की शुभ सूचना देना सुन्नत है। इसी प्रकार उस परिवार को भी मुबारकबाद देना और माता पिता के लिए दुआ करना सुन्नत है जिसे महान ईश्वर ने संतान प्रदान की है।
महान ईश्वर ने जब हजरत जकरिया को बेटा प्रदान किया तो वह इस घटना को पवित्र कुरान के सूरे आले इमरान की 39वीं आयत में बयान करते हुए कहता है कि फरिश्तों ने जकरिया को उस समय आवाज दी और कहा कि ईश्वर तुम्हें यहिया की शुभ सूचना देता है, जबकि वह मेहराब में खड़े नमाज पढ़ रहे थे।
इसी प्रकार महान ईश्वर सूरह मरियम की 7वीं आयत में ये कहता है कि हे जकरिया, हम तुम्हें एक बेटे की शुभ सूचना देते हैं कि उसका नाम यहिया होगा और उससे पहले किसी का ये नाम नहीं था।
इसी प्रकार बच्चा पैदा होने पर लोगों की दावत करना, उन्हें खाना खिलाना और दान देना भी सुन्नत है। बच्चा पैदा होने के 17वें दिन अकीका कराना यानी कुर्बानी कराना भी सुन्नत है। अकीके में भेड़, बकरी या उस जानवर की कुर्बानी कराई जा सकती है जो कुर्बानी के लायक हो। दूसरे शब्दों में बच्चे के पैदा होने की शुभ सूचना देना, मुबारकबाद देना, खाने के लिए दावत देना और अकीका कराना सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की मजबूती का कारण बनता है। इससे परिवार और इस्लामी समाज को यह सीख मिलती है कि महान ईश्वर ने इंसान को जो संतान प्रदान की है, ईश्वर के निकट उसका कितना महत्व है।
बच्चों के अधिकार कन्वेंशन में आया है कि बच्चों के अधिकारों पर ध्यान देने की सबसे अधिक जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। जैसा कि इस कन्वेंशन के 18वें अनुच्छेद में कन्वेंशन के समर्थक देश इस बात के प्रति कटिबद्ध हैं कि वे इस सिद्धांत पर अमल करेंगे और उसे मान्यता देने की दिशा में प्रयास करेंगे कि बच्चे के पालन पोषण और उसके विकास की जिम्मेदारी सबसे अधिक माता पिता पर आती है। माता पिता और कानूनी अभिभावकों पर बच्चों के भरण पोषण और प्रगति की जिम्मेदारी भी है और उनकी मूल जिम्मेदारी बच्चों के उच्च हितों की रक्षा करना है।
इस्लामी शिक्षा में भी आया है कि बच्चों के अधिकारों के संबंध में सबसे अधिक जिम्मेदारी माता पिता की है, क्योंकि बच्चा घर की बरकत, नेमत और अच्छाई है जिसे महान ईश्वर ने बच्चे के माता पिता को प्रदान किया है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में जो रवायतें आई हैं, उनमें बच्चों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान माता पिता के अधिकारों की तरफ देने की बात कही गई है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जिस तरह संतान को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने माता पिता का अनादर करे, उसी तरह माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने संतान का अपमान न करें। इसी तरह एक अन्य स्थान पर आया है कि जिसमें पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अपने बच्चों का सम्मान करो और उनका प्रशिक्षण करो।
बच्चों का एक अधिकार उनके लिए अच्छे नाम का चयन है। बच्चों के अधिकार कन्वेंशन के 7वें अनुच्छेद के अनुसार बच्चों के पैदा होने के तुरंत बाद उनके नाम का पंजीकरण होना चाहिए। इस्लामी शिक्षाओं में भी आया है कि माता पिता की एक जिम्मेदारी नवजात शिशु के लिए अच्छे नाम का चयन है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इस संबंध में फरमाते हैं, पहली चीज़ नाम का चयन है जिसके माध्यम से बाप अपने बेटे के लिए भलाई करता है, तो तुम में से हर एक अपनी संतान के लिए अच्छे नाम का चयन करे।
बच्चों के लिए उचित भोजन उपलब्ध कराना उनका एक निश्चित अधिकार है। बच्चों के अधिकार कन्वेंशन के 24वें अनुच्छेद में आया है कि जो देश इस कन्वेंशन के समर्थक व पक्षधर हैं, उन्हें बीमारियों से मुकाबला करने, उचित व पौष्टिक भोजन का प्रबंध करने और शुद्ध पेयजल का प्रबंध करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, बाप पर संतान का अधिकार यह है कि वह पवित्र और अच्छे भोजन के अलावा उसे कुछ ना दे।
जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दौरान भी जो भोजन बच्चे को दिया जाता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से कि महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह तलाक की 6 आयत में बल देकर कहा है कि बच्चे को दूध पिलाने के संबंध में माता पिता के मध्य सलाह या विचार विमर्श और वैचारिक समरसता होनी चाहिए।
इसी प्रकार महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह अहकाफ की 15वीं आयत में भी दूध पिलाने की अवधि को पूरा करने को आवश्यक व अनिवार्य करार दिया है, क्योंकि बच्चे के विकास और उसके व्यक्तित्व के पूरा होने में इस अवधि की बुनियादी भूमिका है।
शिक्षा ग्रहण करना मुसलमान बच्चे का एक अन्य अधिकार है। ईश्वरीय धर्म इस्लाम में ज्ञान अर्जित करना हर मुसलमान महिला और पुरुष पर अनिवार्य है। इस्लाम धर्म के इस आदेश में बच्चा भी शामिल है, यानी बच्चे को पढ़ाना लिखाना माँ बाप पर अनिवार्य है।
बाल अधिकार कन्वेंशन के 28वें अनुच्छेद में आया है कि जो देश इस कन्वेंशन के प्रति वचनबद्ध हैं, उन्हें चाहिए कि शिक्षा के अधिकार को मान्यता प्रदान करें और इसे व्यावहारिक बनाने की दिशा में प्रयास करें।
शायद बच्चों का एक महत्वपूर्ण अधिकार बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनके साथ खेलना है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बच्चे का आरंभिक 7 वर्ष खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों में बीतना चाहिए। यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम सिफारिश करते हैं कि बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने में भी उनकी सहायता करनी चाहिए। जैसा कि पैगंबर इस्लाम कहते हैं, जिसके पास बच्चा है उसे बच्चे के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए।
बच्चे बहुत ही कोमल भावना के स्वामी होते हैं। कमजोर होने और सबसे अधिक प्रभावित होने की वजह से उनके साथ हिंसा व जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। बालाधिकार कन्वेंशन के 19वें अनुच्छेद के अनुसार इस कन्वेंशन के प्रति वचनबद्ध देशों को चाहिए कि वे बच्चों के साथ होने वाली हर प्रकार की शारीरिक व मानसिक हिंसा को रोकें। ईश्वरीय धर्म इस्लाम में इस विषय पर भी गंभीर रूप से ध्यान दिया गया है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ईश्वर किसी भी चीज से उस तरह से क्रोधित नहीं होता जिस तरह महिलाओं और बच्चों के साथ की जाने वाली हिंसा से क्रोधित होता है।
जब एक व्यक्ति ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से अपने बच्चे की शिकायत की तो इमाम ने फरमाया, उसे न मारो बल्कि उससे नाराज़ हो जाओ, परंतु अधिक देर तक नहीं। इस आधार पर एक ओर जहां शारीरिक दंड देने से मना किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चे से नाराज़गी लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिक देर तक नाराज़गी से बच्चे की कोमल भावना पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और उसके अंदर मानसिक बीमारियों की भूमि प्रशस्त हो सकती है। दूसरी ओर नाराज़गी के लंबा खींचने की वजह से बच्चे पर प्रशिक्षण का प्रभाव भी कम हो जाता है।
पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करो, उन पर दया करो और उनसे किए गए वादों को पूरा करो। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर फरमाते हैं, जब अपने बच्चों का नाम लेते हो तो उनका सम्मान करो, उसे बैठने के लिए जगह दो, उससे रूखेपन से पेश ना हो। इसी प्रकार पैगंबर इस्लाम एक अन्य स्थान पर फरमाते हैं, अगर कोई अपने बच्चे को चूमता है तो उसके नाम एक पुण्य लिखा जाएगा।
ईश्वरीय धर्म इस्लाम ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से बच्चे की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है। इस आधार पर बच्चे का सम्मान माता पिता पर ज़रूरी है और ये वो चीज़ है जिस पर बहुत अधिक बल दिया गया है।
रोचक बात यह है कि इस्लाम धर्म में बच्चों के अधिकारों पर उस समय ध्यान दिया गया जब संसार में किसी प्रकार की संस्था, संगठन या कन्वेंशन नहीं थे। इस्लाम धर्म ने बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर उनके विकास व प्रगति की भूमि प्रशस्त कर दी है। प्रिय श्रोतागण, इस्लाम में बालाधिकार कार्यक्रम की अंतिम कड़ी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि यह कड़ी भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी।